वही नानी माँ अंश को गोद में झुलाते हुए वसुंधरा से बोली, अब ये दूध थोड़ा सा खुद पी और उसके बाद हम अपने बेटे को पिलाएंगे। अब आगे ये शब्द सीधे वसुंधरा के दिल पर लगे थे, लेकिन फिलहाल उसके पास खुद दूध पीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए वसुंधरा ने जल्दी ही दूध पिया, और जब नानी माँ को इस बात की तसल्ली हो गई कि ये दूध अंश के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, तब जाकर उन्होंने अंश को दूध पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वसुंधरा उस वक्त नानी माँ के कमरे से बाहर नहीं गई। ये देखकर नानी माँ वसुंधरा को घूरते हुए हल्की नाराजगी से बोली, अब यहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे को नज़र लगाओगी क्या? इस तरह से बच्चों को दूध पीते हुए नहीं देखते हैं क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता? नानी माँ की बात सुनकर वसुंधरा काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई थी, क्योंकि उसके सामने उसके बेटे का बेटा मौजूद था, लेकिन वसुंधरा अपने काले कारनामों की वजह से उसे चाहकर भी छू तक नहीं पा रही थी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। आज पहली बार अंश की मासूमियत को देखकर वसुंधरा का जी भर आया। उसके दिल में इमोशंस का तूफान मचलने लगा। वसुंधरा का दिल बार बार कह रहा था कि वो आगे बढ़कर एक बार अंश को अपनी गोद में उठा ले, लेकिन नानी माँ की सुलगती हुई आंखों का सामना वो ज्यादा देर नहीं कर पाई और फिर अपना मन मारकर सीधा अपने कमरे में आ गई थी। फिलहाल अब जल्द ही आस्था के खाने की खुशबू को महसूस करके पूरा का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। वहीं रौनक तो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए आस्था को देख के चंचलता से बोली, आस्था, तुम्हें पता है मेरा बेबी कब से तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना चाहता था। सच में आस्था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर उसने जल्दी से आस्था का हाथ लिया और अपने माथे पर रखकर चूम लिया। वहीं आहान भी जल्दी से हामी भरते हुए तपाक से बोला, अरे आस्था भाभी, केवल रौनक नहीं, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। आप जानती हैं, आप घर में नहीं थी तो इतना टेंशन का माहौल था कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन अब लगता है कि आज मुझे सुकून से खाना खाने को मिलेगा। आहान की बातें सुनकर आस्था हल्का सा मुस्कुरा देती है। आस्था के होठों की मुस्कान और उसका चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि भीतर से वो कितनी ज्यादा दुखी है। फिलहाल पूरा का पूरा परिवार अब डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। आकाश, सुमित, ध्रुव, राधिका सभी एक साथ जोड़े से बैठे थे और सब लड़के अपनी अपनी पत्नी को खाना सर्व कर रहे थे। वहीं राधिका की आंखों की चमक अभी भी फीकी थी, लेकिन वो घर वालों के सामने अपनी उदासी दिखा नहीं सकती थी, इसीलिए वो झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए बैठी थी। वहीं सुमित राधिका के चेहरे की मायूसी को नोटिस कर चुका था, लेकिन वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था और ये दर्द उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। फिलहाल क्योंकि अरमान वहां मौजूद नहीं था, आस्था मायूसी सिर्फ एक तरफ खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, क्योंकि उसका पति अभी तक नाश्ते की टेबल पर आया ही नहीं था। तब दादाजी ने अभिमान जी की ओर चुपके से इशारा किया। अभिमान जी तुरंत दादाजी का इशारा पाकर उठ खड़े हुए। अभिमान जी ने आस्था को प्यार से समझाया, बेटा, अरमान का इंतजार कर रही हो, तुम्हें पता है ना, वो अभी नहीं आएगा, और वैसे भी जब से उसकी यादें गई हैं उसने सुबह का नाश्ता करना छोड़ दिया है। वो अब सीधा 9 बजे ही अपने कमरे से आएगा और ऑफिस के लिए निकलेगा। इतना सुनकर अगले ही पल आस्था पूरी तरह से मायूस हो गई थी, लेकिन अभिमान जी के जोर देने पर वो कुर्सी पर बैठ गई। तब तक नानी माँ अंश को एक बार फिर से सुलाकर बाहर आ गईं और अंश को भी अपने साथ ले आईं। उन्होंने हॉल में बने झूले में उसको लिटा दिया और खुद भी सबके साथ बैठ गईं। कहीं न कहीं सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन अरमान की कमी सभी को खल रही थी। वहीं उस वक्त सभी लड़कियां तुरंत नाश्ते से पहले उठीं और आस्था की ओर देखकर धीमी आवाज में बोली, आस्था, तुम्हारे बिना हम नाश्ता करें हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज तुम भी हम सबके साथ में बैठो ना। उनकी आवाज में चिंता सुनकर आस्था हल्के से मुस्कुराई, फिर एकदम से बोली, आप सब लोग नाश्ता कीजिए, रश्मि दीदी, राधिका दीदी ये आते ही होंगे, तब तक मैं इनकी फेवरेट काली कॉफी बनाकर रख देती हूँ, मुझे पता है कि आते ही ये सबसे पहले कॉफी ही मांगेंगे। आस्था की बातें सुनते सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए और फटाफट से चटकारे लेकर आस्था के हाथ का बनाया हुआ खाना मजे से खाने लगे। वहीं अरमान, जिसे आज 9 बजे नहीं बल्कि 8 बजे ऑफिस के लिए जाना था, सीधा जिम रूम से पसीना बहाकर नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ गया था, और जैसे ही उसने देखा कि सभी लोग चटकारे लेकर नाश्ता कर रहे हैं और सभी लड़कियां, स्पेशली राधिका और रश्मि, उसके दोस्त यानी कि आकाश और सुमित के पास बैठी हुई हैं, तो ये देखकर उसका माथा सिकुड़ गया। वहीं आस्था अब वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो एक थाली में नाश्ता लगाकर सीधा मारिया के पास जा पहुंची थी। नानी माँ ने आस्था को बता दिया था कि मारिया अभी सबके साथ नाश्ता नहीं करती है, और आहान ने भी कम शब्दों में उसे बता दिया था कि पता नहीं मारिया दीदी को क्या हो गया है, वो सबके साथ पहले की तरह घुलमिल नहीं रही हैं। वहीं आस्था भी अब मारिया से कोई बातचीत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस वक्त उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से अपने पति में उलझा हुआ था। फिर भी वो मारिया को इग्नोर नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए वो नाश्ते की थाली लेकर उसके कमरे में जा पहुंची। वहां टाइगर भी उसी के साथ मौजूद था। टाइगर को साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उसे 9 बजे कार में इंतजार करना है, लेकिन आज अरमान 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकलने वाला था, इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। आस्था और टाइगर को देखकर शांत स्वर में बोली,
टाइगर भैया, मारिया दीदी, आप लोग भी यहाँ पर एक साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। कहीं ना कहीं आस्था मारिया की आंखों में खालीपन देख चुकी थी और टाइगर की आंखें भरी ही पूरी तरह से इमोशनलेस थीं, लेकिन आस्था का दिल बार बार यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। भला ये लोग इतने शांत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भले ही वे कितने भी खतरनाक हों, उनके चेहरे पर हमेशा डेंजरस लुक नजर आता था। लेकिन आज मारिया और टाइगर के चेहरे के एक्सप्रेशन खामोश थे और यही खामोशी आस्था को खटक रही थी। फिलहाल उसने सोचा कि इस बारे में वो उनसे बाद में बात करेगी, इसीलिए वो उन्हें नाश्ता देकर वहां से बाहर आ गई। और जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि नाश्ते की टेबल से थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर अरमान सभी लोगों को नाराज नजरों से देख रहा था। वहीं सभी लोग इस बात से बेखबर आराम से नाश्ता करने में बिजी थे। आस्था ने जैसे ही अरमान को सूट बूट में तैयार देखा तो उसकी नजरें पूरी तरह से उस पर टिक गईं और वो आह भरते हुए सोचने लगी, हाय, जब से ये डेविल मुझसे दूर हुआ है तब से मेरा डेविल पति कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं हो गया है, और मैंने तो इन्हें साफ साफ कहा था कि आपको शेविंग नहीं करनी है, लेकिन ये तो मुझे और भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? अरमान को गहरी नजरों से देखते हुए आस्था उसकी स्मार्टनेस और उसके हैंडसम से चेहरे को प्यार से निहार रही थी। अब जैसे ही अरमान को किसी की नजर महसूस हुई, उसने एकदम से आस्था की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया था। और अगले ही पल उसने सोचा, ये लड़की मुझे इतनी बुरी तरह से क्यों घूर रही है, ओ गॉड। फिर वो सीधा डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा था। वहीं लब जैसे ही सबने अरमान को डाइनिंग टेबल पर देखा, सभी जो थोड़ी देर पहले हंसी खुशी नाश्ता कर रहे थे वो एकदम खामोश हो गए।
वहीं अरमान शक भरी नजरों से सभी लड़कियों को घूरने लगा और आंखों के इशारे से ध्रुव को देखकर इस तरह से जतला रहा था कि उसने भले ही लड़कियों को यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इस तरह से उसके दोस्तों और भाइयों को लड़कियों के साथ फ्री होने की इजाज़त नहीं दी है, जो वो सब इतना फ्री होकर उनके साथ नाश्ता कर रहे हैं। फिलहाल अरमान ने आईब्रो चढ़ाई और किसी से कुछ नहीं कहा और ऑर्डर देने वाली आवाज़ में बोला, मेरे कॉफ़ी कहाँ है? अरमान की आवाज़ सुनकर आस्था तुरंत हरकत में आ गई। फटाफट से अरमान की कॉफ़ी लेकर वो वहाँ मौजूद थी और उसके सामने उसकी ब्लैक कॉफ़ी रख देती है। अरमान ने आस्था की ओर नज़र उठाकर देखना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आस्था की नज़रें अरमान पर ही टिकी हुई थीं। उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो अरमान के अलावा किसी और को देखे, क्योंकि उसे उसका पति बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अरमान का एटीट्यूड, अरमान का इरिटेटिंग बिहेवियर, पता नहीं क्यों आज उसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। आस्था ने मुंह बनाया लेकिन कुछ कहा नहीं। हालांकि उसके दिल के कोने में जो दर्द था वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था, लेकिन अपने पति को देखने का तो उसका पूरा हक और अधिकार था। वहीं आहान ने अब जल्दी से अरमान को टोका, अरमान भाई, आप ये ब्लैक कॉफ़ी मत पीजिए, पहले ये देखिए पनीर के पराठे आस्था भाभी ने कितने मस्त बनाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब जैसे ही आहान ने भाभी कहा, वैसे ही भाभी शब्द सुनकर अरमान के माथे पर सिलवटे आ गई। वहीं ध्रुव ने जल्दी से आहान को पोहनी मारी तो आहान के मुंह से हल्की सी दर्द भरी चीख निकल गई और वो ध्रुव को सुलगती हुई नज़रों से देखने लगा। लेकिन रौनक, रश्मि, आकाश, साथ ही साथ दादाजी और नानी माँ, अब सबके सब एक साथ आहान को गुस्से से देखने लगते हैं, क्योंकि आहान ने बातों ही बातों में आस्था को भाभी जो बोल दिया था। अब जैसे ही आहान ने अपने शब्दों पर गौर किया तो उसने तुरंत ही अपने बाल नोच लिए और परेशान होकर सोचने लगा, हे भगवान, मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, हमेशा शेर के मुंह में सबसे पहले मैं ही हाथ डाल देता हूँ। फिलहाल आहान ने सिचुएशन को भांपते हुए खुद के इमोशंस को संभाला और अरमान की तरफ देखकर जल्दी से बोला, अरमान भाई, आप तो जानते हैं ना, ये बेचारी अब अपने पति के साथ नहीं रहती और ये इतनी प्यारी है कि मेरा इन्हें भाभी बोलने का दिल करता है, तो मैंने बस ऐसे ही इन्हें भाभी बुलाना शुरू कर दिया। आई होप इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आहान ने अटकती हुई आवाज़ में अपनी दिल की बात कही तो अरमान ने उससे कुछ और पूछना ज़रूरी नहीं समझा। फिलहाल अरमान ने जल्दी ही अपनी कॉफ़ी पी और खड़ा हुआ और बाकी चारों को देख के रोबदार अंदाज में बोला, अगर तुम लोगों का नाश्ता पानी हो गया हो तो फटाफट से मुझे स्टडी रूम में मिलो, उसके बाद मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। ये बोलकर अरमान लंबे कदमों से सीधा स्टडी रूम में पहुंच चुका था। वहीं सभी लोग अरमान का इंस्ट्रक्शन पाते ही तुरंत जिसके हाथ में जो निवाला था वैसे का वैसे ही प्लेट में रखकर खड़े हो गए। वहीं रश्मि, राधिका उन लोगों को टोकते हुए एक साथ बोली, अरे अरे, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, कम से कम नाश्ता तो पूरा करके जाइए। तभी आकाश और सुमित कोल्ड वॉइस में बोले, नहीं, सबसे पहले हमें अरमान की बात सुननी होगी, उसके बाद ही हम नाश्ता करेंगे। इतना कहते हुए वो सब बिना रुके सीधा अरमान के स्टडी रूम में जाने लगते हैं। वहीं ये सब देखकर सभी लड़कियों के चेहरे एकदम से मुरझा गए थे, क्योंकि उनके पतियों ने सही से पेट भरकर नाश्ता नहीं किया था तो उनका भी आगे दिल नहीं किया कि वे नाश्ता कर सकें। तभी आस्था के दिमाग में ये सारी बातें खटक रही थी, उसे कुछ अनहोनी होने की आशंका नजर आई, इसलिए वो जल्दी से बोली, ये सब क्या हो रहा है नानी माँ, और अरमान जी इस तरह का अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, मानो कि सभी लड़कियाँ उनके लिए अजनबी हों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था। क्योंकि आस्था को अभी तक ये नहीं पता था कि अरमान को उसके दोस्तों और भाइयों की शादी का सच भी नहीं पता।
अब सभी लड़कियों ने डबडबाई आंखों से एक दूसरे की ओर टकटकी लगाए देखा। फिर तभी रश्मि और वंशिका उठ खड़ी हुई और धीमी आवाज में उसे समझाते हुए बोली, दरअसल आस्था, जब से तुम गई हो तब से हमारी जिंदगी में यही सब ड्रामा चल रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब से अरमान की याददाश्त गई है तब से हम सभी कपल अलग हो गए हैं। अब इतना सुनते ही आस्था पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गई थी और वो एकदम से बोली, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? प्लीज रश्मि दीदी, राधिका दीदी, आप लोग मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही हैं? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आस्था का सवाल सुनते ही वहाँ की हवा जैसे ठहर सी गई। तभी सबने अपने सर झुका लिए थे, क्योंकि आस्था को सारी बातें बताकर वे लोग उसे उदास नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी आस्था आगे बढ़ी और उसने बड़ी बड़ी आंखों से बाकी सबको सवालिया निगाहों से देखा। फिर अभिमान जी, दादाजी और नानी माँ ने भी अपनी नजरें झुका ली, तो आस्था पूरी तरह से सोच में पड़ गई थी। आखिर यहाँ हो क्या रहा है?